बताओ, क्या तुम मुझे मारते हुए देखना चाहते हो? अरुणिमा के शब्दों ने आस्तिक को पूरी तरह से जमा दिया था। वो उसे गंभीरता से देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिसे वो रोक नहीं सकता था। आस्तिक एक बुरे सदमे में चला गया था। ऐसा लग रहा था उसने जो सुना उस पर यकीन करना उसके लिए सच में असंभव है। वो एकदम से अरुणिमा से दूर होता है और झटके से खड़ा होते हुए उसे कहता है, पागल हो गई हो क्या? क्या बोले जा रही हो? खबरदार जो ऐसा कुछ कहा तो। अरुणिमा की धीरे से खड़ी होते हुए आस्तिक के पास आती है। आस्तिक उसके चेहरे पर उसका जवाब जानता था, वो और ज्यादा बेचैन हो जाता है। वो अरुणिमा के पास आता है और उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहता है, क्यों कर रही हो ऐसा? क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब करके? देखो, मैं तुम्हारे सामने झुक गया, मैं तुम्हारे सामने दीवाना हो गया, मैं तुमसे माफ़ी मांग चुका हूँ और अब तो मैं तुम्हारे सामने रो रहा हूँ। क्या तुम्हें इन सब में भी सुकून नहीं मिल रहा है जो तुम मुझे अंदर से तड़पता हुआ देखना चाहती हो? लेकिन अरुणिमा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे तलाक दे दो आस्तिक, वरना तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। आस्तिक के हाथ कांप जाते हैं और अरुणिमा के चेहरे से अपने आप नीचे गिर जाते हैं। वो एकदम से अरुणिमा को देखने लगता है। उसकी पूरी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और उसके मुंह से एक हताशा भरी आवाज निकल रही थी। लेकिन अरुणिमा की खुद की आंखों में भी आंसू थे। उसने आस्तिक को देखते हुए कहा, कभी कभी कुछ अच्छा पाने के लिए हमें अपने सबसे बुरे पल का सामना करना पड़ता है। हमारी शादी शुरू से ही स्वार्थ, झूठ और धोखे पर आधारित थी, जिसकी बुनियाद ही खोखली रही। हम उस पर एक अच्छी नींव कैसे रख सकते हैं? मैं आज़ादी चाहती हूँ आस्तिक। सच कहूँ तो ये शादी मेरे लिए एक बोझ की तरह हो गई है। मैं इसे निभाना चाहती थी, लेकिन अब मुझे इसमें घुटन महसूस हो रही है। ये शादी मेरे लिए बेड़ियाँ बन गई है। दर्द, तड़प, मुझे ये हर चीज़ शादी में मिली है। बस जो नहीं मिला वो है आज़ादी। मुझे आज़ाद होना है, इस घुटन भरी जिंदगी से आज़ाद होकर कुछ पल सुकून से जीना है। आस्तिक के पास अब शब्द ही नहीं बचे थे। वो अरुणिमा से क्या कहता? उसने सब कुछ कहकर अरुणिमा को रोकने की कोशिश की, लेकिन अरुणिमा का हर एक शब्द आस्तिक के हर एक ख्याल को चीरता हुआ उसके दिमाग में जा रहा था। उसने बस अरुणिमा के सामने अपने दोनों हाथ फैलाए और किसी भिखारी की तरह गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ अरुणिमा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं हर हाल में तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो फिर तुम्हें क्यों बाकी चीज़ों की परवाह है? तुम क्यों मुझे तलाक चाहती हो? लेकिन बदले में अरुणिमा ने उसके दोनों हाथों को थाम लिया और उसकी हथेली को चूम लिया। आस्तिक ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं और आंसुओं की बूंद उसके गाल पर गिर गई। अरुणिमा ने आस्तिक की आंखों में देखा, जिनमें खुद आंसू थे। वो दोनों इस वक्त एक दूसरे के लिए जज्बाती हो रहे थे, लेकिन एक दूसरे के विपरीत भी खड़े थे। अरुणिमा ने उसे देखते हुए कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए एक बार फिर से अपने अंदर की अरुणिमा को बाहर लाने के लिए। मुझे याद नहीं आता कि मैंने आखिरी बार खुद को कब महसूस किया था। मुझे याद नहीं कि मैं आखिरी बार आज़ाद कब महसूस हुई थी। कुछ वक्त के लिए मैं सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहती हूँ। आस्तिक, जब से हमारी शादी हुई थी उस दिन से लेकर अब तक मैं एक पल भी सुकून से नहीं रह पाई हूँ और ना ही मैंने कभी भी अपने बारे में सोचा है। हमारी शादी शुरू से ही एक बेमतलब का रिश्ता थी। मुझे इस रिश्ते से आज़ादी चाहिए, मुझे तुमसे आज़ादी चाहिए, मुझे उस दर्द से आज़ादी चाहिए जो मुझे तुम्हारे साथ रहकर होता है। मुझे लगता है कि अभी के लिए हम दोनों का अलग हो जाना ही बेहतर है, पर अगर तुम मुझे तलाक नहीं दोगे तो मैं खुद की जान ले लूंगी। अरुणिमा आस्तिक को देखते हुए वो सब कही जा रही थी। आस्तिक जानता था कि अरुणिमा की भावनाएं गलत नहीं हैं और वो उसके लिए सही भी हैं, लेकिन आस्तिक अपने दिल के हाथों मजबूर हो रहा था। दोनों अपनी आंसुओं को रोकने की लाख कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी भावनाएं सामने आ रही थीं। कमरे में एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। आस्तिक ने अपनी नाक से जोर से सांस खींची और अपने जज्बातों को अंदर दफन करते हुए उसने अरुणिमा को देखते हुए कहा, तुम्हें वक्त ही तो चाहिए ना, तो वक्त ले लो। कितना वक्त चाहिए तुम्हें? जितना भी वक्त चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। तुम बताओ तुम्हें कितना वक्त चाहिए? 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना? तुम चाहो तो इसके लिए जितना चाहे उतना वक्त ले सकती हो, लेकिन मुझसे तलाक की उम्मीद मत करो, वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा और यही मेरा आखिरी फैसला है। अरुणिमा जानती थी आस्तिक को मनाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उसने भी एक चीज तय कर ली थी और जो चीज़ वो सोच रही थी वो उसके और आस्तिक दोनों का भविष्य तय करने वाली थी। उसने भी एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे कितना वक्त चाहिए। तुम 1 महीने की बात कर रहे हो, मैं तो अगर 1 साल भी ले लूँ तो भी मेरे लिए वो वक्त कम पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ 1 साल में बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी हूँ, उन सबको भुलाने के लिए कम से कम 1 साल चाहिए। अरुणिमा ने इतना ही कहा था कि आस्तिक तुरंत उसकी तरफ देखता है और उसके हाथ को थामते हुए कहता है, 1 साल, सिर्फ 1 साल मुझे मंजूर है। मैं 1 साल तक तुम्हारा इंतजार करूंगा और मैं वादा करता हूँ कि उस 1 साल में मैं ना तो तुम्हें अपने होने का एहसास करवाऊंगा
और ना ही तुम्हें परेशान करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। अरुणिमा के चेहरे पर हल्की दर्द भरी मुस्कान थी। आस्तिक को मनाना सच में बहुत मुश्किल हो रहा था। वो आगे बढ़कर आस्तिक का चेहरा अपने हाथों में लेती है और उसके माथे को चूमते हुए कहती है, मुझे एक साल खुद को तलाशने के लिए चाहिए। अगर तुम्हारे साथ जुड़ी रही तो कभी खुद के अंदर की अरुणिमा को पहचान नहीं पाऊंगी। इसीलिए एक नई शुरुआत के लिए हमें पुराने सायों का अंत करना होगा। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? आस्तिक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तो अरुणिमा ने एक सच्चाई के साथ सिर हिला दिया। आस्तिक कसकर अपनी आंखें बंद करता है। उसके अंदर बहुत सी चीजें चल रही थीं, लेकिन इस वक्त उसे सबसे ज्यादा अरुणिमा जरूरी थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और मैं तुम्हारे इंतजार के पूरे होने का इंतजार करूंगी। अरुणिमा ने भी उसकी आंखों में सच्चाई के साथ देखते हुए कहा। लेकिन अगले ही पल आस्तिक अरुणिमा के पास आता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में रखते हुए झुककर अरुणिमा के होठों को चूमना शुरू कर देता है। वो एकदम से अरुणिमा के होठों पर टूट पड़ता है और उसे किसी बेसब्र इंसान की तरह चूमने लगता है। अरुणिमा के भी हाथ धीरे धीरे उसके सीने से होते हुए उसके कंधों पर जाते हैं और उसने भी अपने हाथ उसकी गर्दन पर लपेट दिए। आस्तिक के हाथ अरुणिमा की कमर पर चले गए और उसने कसकर अरुणिमा को अपने करीब कर लिया। वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनके बीच हवा की भी जगह नहीं थी, लेकिन अगर कुछ था तो वो थे उनके होठ जो एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। शायद वो जरूरी भी था। एक लंबी जुदाई के लिए उन दोनों का एक साथ होना भी जरूरी था। जब दोनों की सांसें अस्थिर हुई तब कहीं जाकर उन्होंने एक दूसरे के होठ छोड़े, लेकिन इस बीच वो दोनों बेदम हो गए थे। आस्तिक धीरे से अरुणिमा के सूट की डोरी खोलने लगता है, लेकिन अरुणिमा ने उसका शर्ट अपनी मुट्ठी में पकड़ते हुए कहा, आस्तिक हम दूसरे के घर में हैं। लेकिन बदले में आस्तिक ने उसके सूट को उसके कंधे से नीचे सरकाया और उसके कंधे पर चूमते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं है, अपनी फेयरवेल गिफ्ट के रूप में मैं इतना पाने का हकदार तो हूं ना।
अरुणिमा कुछ नहीं बोल सकी। आस्तिक उसे गोद में उठाकर सीधे बेड पर ले जाता है और उसे बेड पर लिटाकर उसके ऊपर आ जाता है। अरुणिमा और आस्तिक की निगाहें एक दूसरे पर टिकी थी, जैसे आज की रात वो दोनों अपने आने वाले इंतजार के लिए खुद को इस पल में कैद कर लेना चाहते हों। आस्तिक धीरे से अपनी शर्ट के बटन खोलता है और अपनी शर्ट को अपने बदन से अलग कर देता है। अरुणिमा के हाथ उसके सीने पर जाते हैं जहां पर उसने अपना नाम देखा। वो एक पल के लिए आस्तिक को देखने लगती है तो आस्तिक मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखता है। वो धीरे से झुकते हुए अरुणिमा के पास आता है और उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखकर उसे चूमना शुरू कर देता है। अरुणिमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी सांसें तेज हो रही थीं, पर वो खुद भी नहीं रुकना चाहती थी और ना ही आस्तिक को रोकना चाहती थी। उन दोनों के लिए आज की रात एक यादगार रात बनने वाली थी। आस्तिक की बेसब्री सब उसके एक्शन में नजर आ रही थी। वो अरुणिमा के बिना एक घंटा भी नहीं रह सकता था, तो यहाँ पर एक साल की बात थी।